तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। अभी के सेशन में हम सबके बीच में आदरणीय राजू भाई जी पधारे हुए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। आप पिछले 45 साल से भी ज्यादा समय से समर्पित रूप में मधुबन में सेवाएं देते हैं, और मधुबन के वरिष्ठ भाइयों में से आप एक हैं। आपने बड़ी दीदी, बड़ी दादी और अभी भी दोनों दादियों के साथ साथ रह करके बहुत यज्ञ की सेवाएं की है और कर रहे हैं, और आपकी विशेषता है हम जो रोज मुरली में रोज नया वरदान और स्लोगन सुनते हैं और अनुभव करते हैं, ये आपकी ही विशेषता है जो अव्यक्त मुरलियों में से पढ़ाई करके उसमें से निकाल करके हम सबके सामने बहुत इजी रूप में रखते हैं। साथ साथ हर महीने जो हम दादियों का याद प्यार पत्र सुनते हैं वो भी आप ही करते हैं, और आपका शौक है ज्ञान रत्नों से खेलना और ज्ञान की गहराई में जाना। तो ऐसे दीदी और दादियों की पालना में पले हुए आदरणीय भाई साहब हमको भी उसी अनुभव के साथ साथ कैसे दादियों और दीदियों ने तपस्वी मूर्त बन करके बाबा का साकार अनुभव कराया, तो हम भी तपस्वी मूर्त कैसे बने जो हमारे चेहरे से वो तपस्या झलके, तो आज हम भाई साहब से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन की इस तपस्या भूमि में तपस्या का गोल्डन चांस मिलना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। इसके कण कण में बाबा की, दादियों की यादें समाई हुई हैं। मैं समझता हूं आप सभी योग में कोई प्रकार की मेहनत नहीं कर रहे होंगे। ये वरदान भूमि है, चरित्र भूमि है, परमात्मा की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है। इस भूमि पर आते ही मन और बुद्धि स्थिर और एकाग्र हो जाती है, बहुत सहज रूप से योगी जीवन का अनुभव होने लगता है। जब मैं शुरू शुरू में मधुबन आया था तो एक दिन हम लोग बहुत थोड़े थे, तो दीदी और दादी की विशेष पालना मिलती थी, तो दीदी ने अपने कमरे में मुझे बुलाया और एक प्रश्न पूछा। दीदी मनमोहिनी को किसी ने देखा है? कौन है ऐसे पुराने जो पालड़ी वाले होंगे वो जानते होंगे, बहुत कम है, 7-8 ही हैं। तो दीदी ने मुझे बहुत प्यार से अपने बाजू में बिठाया और पूछने लगी, तुम ब्रह्मा कुमार हो तो इसमें तो कोई पूछने का प्रश्न ही नहीं था, ब्रह्मा कुमार तो हैं। फिर बोलती कि ब्रह्मा कुमार तो सभी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तुमको तपस्वी कुमार बनना है, केवल ब्रह्मा कुमार नहीं। तब से लेकर के इस बात पर बहुत अटेंशन गया कि वो तपस्या क्या है। सेवाएं दिन और रात अथक बन करके मधुबन में करने का चांस मिला, सब प्रकार की ऑलराउंड सेवाएं यज्ञ की, क्योंकि यहां पर कोई भी मजदूर नहीं थे उस समय, बहुत छोटा सा घर था, पांडव भवन का भी भंडारा नहीं था, विशाल भवन नहीं था, मेडिटेशन हॉल नहीं था, वो छोटा सा स्थान था। तो सारी यज्ञ की स्थूल कारोबार, चाहे भोजन बनाना, चाहे पानी गर्म करना, चाहे कपड़े धोना, चाहे सफाई करना, समझते हो, सब प्रकार की ऑलराउंड सेवाएं, और इसीलिए भाइयों को समर्पित कराते हैं, बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे, जो बुजुर्ग हो गई सेंटर्स पर नहीं रख चल सकती हैं उनको रख लेते थे, कहाँ जाएंगे। लेकिन जब सेवाओं में भाइयों को समर्पित करने कराया, और यहाँ पर हम 25-30 सेवाधारी थे, तो सब प्रकार की स्थूल सेवाएं ही थी, और उन सेवाओं के बीच में तपस्वी जीवन बना करके रहना, तो जरूर दीदी जी का ध्यान इस बात पर गया कि मुरली सुन लेना, योग कर लेना, यही तपस्या नहीं है। लेकिन हर कर्म से, हर कर्म इंद्रिय से दिखाई दे तपस्वी है। तपस्वी माना जिसके अंग अंग में त्याग और वैराग्य की भावना समाई हुई हो, बिना त्याग और वैराग्य के वो तपस्या नहीं कर सकता। देह अभिमान का संपूर्ण त्याग, जब तक देह अभिमान का त्याग नहीं हुआ तब तक आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या नहीं हो सकती। हम सब की तपस्या यही है, हम चलते फिरते कर्म करते, कराने वाला एक मेरा बाबा मुझसे करा रहा है और दूसरा करावनहार मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे, बाबा के प्यार में संकल्पों की दृढ़ता के आधार से इन कर्म इंद्रियों को इतना शीतल और पावन बना ले जो किसी भी प्रकार की इसमें देह भान की बदबू न रहे, उसको कहते हैं तपस्वी जीवन। ब्रह्मा कुमार बनना, ब्रह्मा कुमारी बनना, ये तो बहुत सहज है, सफेद ड्रेस पहन ली, खान पान शुद्ध कर लिया, अच्छे संग में बैठने लगे, मुरली का अध्ययन करने लगे, बैज लगा लिया, ब्रह्मा कुमार का टाइटल तो मिल गया। लेकिन एक एक कर्म इंद्रिय शीतल हो जाए, पावन हो जाए, ये आत्मा इस मस्तक मणि के बीच में चमकने लगे, किसी भी प्रकार की दैहिक आकर्षण न रहे, तब कहेंगे तपस्वी है। तो वो पाठ आज तक पक्का हो रहा है कि हम तपस्वी हैं, और तपस्या ही एकमात्र उपाय है आत्मशुद्धि की। अगर हम आत्मा को शुद्ध और पावन बनाना चाहते हैं, तो आज भी बाबा कह रहे थे, बच्चे त्रिवेणी में गंगा जमुना में स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बन जाएगी। आत्मा की शुद्धि के लिए तो बहुत गहरी याद चाहिए, योग चाहिए, जिसको तपस्या कहते हैं, जिसके अंदर मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, भटकना बंद हो जाए, एक बाबा के सिवाय और कोई भी मन और चित्त में ना आए, एक बाबा के प्यार में समाना ही तपस्या है। एक बल एक भरोसा, एक की आज्ञा एक की श्रीमत सिरमत है। हर बात में हर कर्म में बाबा 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 का अनहद नाद अंदर से गूंजता रहे, ये है तपस्या। बाबा के सिवाय और कोई भी दिल में बसे नहीं, उसने मुझे अपनी ऐसी श्रेष्ठ जीवन जो दी है, दिल में बाबा है, चित्त में बाबा है, नैनों में बाबा है, ये है तपस्या। कर्म करने की छुट्टी है, कर्म कर कितने भी हों, किसी भी प्रकार का कर्म किया जाए, लेकिन कर्म अपने बंधन में न बांधे। कर्म कराने वाली मैं आत्मा अलग हूं, कर्मेंद्रियों से डिटैच होने का अभ्यास और मन पर संपूर्ण नियंत्रण, इसका भटकना बंद हो जाए, ये है तपस्या। अगर हम सब ऐसी तपस्या करने शुरू करें, ऐसे तपस्वी मूर्त बन करके रहें, तो कई प्रकार की जो कंप्लेन है वो समाप्त हो जाएगी। तपस्या के लिए कोई खास समय देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हठ योगियों ने तपस्या जो की है, कोई एक सिद्धि पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, कोई एक टांग पर खड़े हो गए। आप अगर कुंभ के मेलों में जाएंगे, फोटो देखेंगे, कहते तपस्वी हैं, क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई किस रीति से आसन लगाए हैं, कोई किस रीति से, कोई एक टांग पर खड़े हुए हैं, कोई सिर के बल खड़े हुए हैं, कोई कांटों के बीच में बैठे हुए हैं, कोई पानी के बीच में खड़े हैं, तपस्या की है, हठ किया है, और ऐसी तपस्या की है जो भगवान को भी उन्होंने प्रसन्न कर लिया, और जो चाहा वो वरदान उनसे ले लिया। बोला ना आता ना वो बाबा, उसने वरदान दे दिया, क्योंकि उसकी तपस्या ऐसी थी। लेकिन हम सब तपस्वी बच्चे बाबा से कोई ऐसा वरदान नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, लेकिन तपस्वी जीवन है तो सब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। कोई संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है, संकल्प ही सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं। सिर्फ कुछ बातों का एक त्याग है, जो आकर्षण करने वाली चीजें हैं, देह है, संबंध है, पदार्थ है, संस्कार हैं, जिन आकर्षणों में, जिन बंधनों में आत्मा बंधी हुई थी, अब तो नहीं है ना, बंधी हुई थी, 63 जन्म तक बंधी रही है। संगम पर बाबा मिला और ये सब आकर्षणों से हम सब ने किनारा किया, नहीं चाहिए कुछ। जब आत्मा अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती है, जब इच्छाएं कम कर लेती है, एक बाबा इसमें स्लोगन देते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। अगर कोई चीज अच्छी लगती है, माना उसकी कुछ आकर्षण होती है, जैसे आप भोजन कर रहे हैं और विशेष किसी एक चीज की महिमा करें, ये बहुत अच्छी चीज बनी है, तो खिलाने वाला क्या करता है, फट से आ जाता है बाजू में और ले लो थोड़ी, आकर्षण है उसकी, अच्छाई का वर्णन है। तो बाबा भी कहते हैं ये भी एक आकर्षण बंधन का रूप है, अच्छा लगना, चेक करना क्या अच्छा लगता है। कोई पदार्थ अच्छे लगते हैं, व्यक्ति अच्छे लगते हैं, संस्कार अच्छे लगते हैं, वैभव अच्छे क्या अच्छा लगता है, या एक बाबा ही अच्छा लगता है, बाबा का ही ये संसार अच्छा लगता है, बाबा की पढ़ाई अच्छी लगती है। कोई भी हद की चीजें जब तक आकर्षित कर रही हैं, तब तक दिल में एक बाबा बसता नहीं है, दिल में समाता नहीं है, क्योंकि दूसरी चीजें इस दिल के अंदर रखी हुई हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे अपने दिल में बिठा लो। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बच्चे बाबा कहाँ रहता है, तो सभी ने अपने अपने उत्तर देना शुरू किया। अव्यक्त बाबा ने पूछा था, तो कोई ने कहा सूक्ष्म वतन में रहता है, कोई ने कहा मूल वतन में रहता है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बाप वहां रहता है जहां बच्चों के दिल का प्यार है, स्नेह का घेरा है, उस घेरे में बाप रहता है। तो मधुबन में वो स्नेह का घेरा है, इसलिए यहां अनुभव होता है कि बाबा यहीं है, क्यों बहुत स्नेह बच्चों का बाबा के प्रति है। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों के दिल में रहता है, और इस समय लेटेस्ट बाबा की मुरलियां सुनते हैं, दिल में मेरे बाबा को बसा लो, दिल से कहो मेरा बाबा। और कई बार दादी गुलजार दादी कहती हैं कि किसको दिल में बिठाया, बाबा को कहाँ बैठेगा, अगर इस दिल के अंदर स्थान कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई बड़े व्यक्ति को कोई स्थान पर बिठाना होता है, तो उसकी कितनी सफाई करते हैं, कितनी हर प्रकार को व्यवस्थित करते हैं कि फलाने फलाने आने वाले हैं, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर हम बाबा को, सर्वशक्तिमान को, परम पवित्र आत्मा को, परम आत्मा को अपने दिल में बिठाना चाहते हैं, तो कितनी स्वच्छता चाहिए, कोई भी प्रकार की व्यर्थ और नेगेटिव बातें इस मन के अंदर भरी हुई ना हो, पास्ट की कोई भी एक्टिविटी के चिन्ह, कोई भी स्मृतियां इस बुद्धि में इमर्ज न रहे। आप सब चेक करना, पास्ट में बहुत से ऐसे कर्म हुए हैं जो हमारे योग में बहुत विघ्न डालते हैं, बार बार उन बातों पर ध्यान चला जाता है। कल मैं कैड में क्लास करा रहा था, क्लास करा करके जब मैं बाहर आया तो एक भाई मेरे पीछे पीछे आ गया, कहता भाई जी मैं 3 साल से कैड में आता हूँ, मैं अभी बाबा का बच्चा बनना हूँ, रेगुलर मुरली सुनता हूँ, अमृत वेला भी करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे योग का अच्छा अनुभव नहीं हुआ, योग नहीं लगा। आप लोग इतनी अच्छी कमेंट्री देते हो, इतना अच्छा बताते हो, मेरा ऐसे ही जाता है जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे, मुझे बताओ क्या किया जाए, इच्छा जागृत हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत हो गई तो जरूर बाबा अनुभव कराएगा, अच्छा आप कल आना मेरे पास। उस दिन टाल दिया, कल टाल दिया, आज बुलाया 10 बजे। तो जब आया कहता आज अमृत वेले अच्छा लग गया योग। मैं कैसे लग गया, कहता जो इच्छा जागृत होगी ना, मेरा योग नहीं लगता है, नहीं लगता है, मुझे कुछ पूछना है, जानना है, तो आज बस बाबा जो आप लोग बताते उसका मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा योग लग गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कारण पूछा, हमने कहा क्यों नहीं लगा, 3 साल हो गए। तो कारण उसने यही बताया कि बहुत सारी बातें जो मैंने इस कर्म इस जीवन में जो पाप कर्म किए हैं, जो मेरे से गलतियां हुई हैं, और विशेष विकारों के वशीभूत होकर के काम विकार के कारण हुई हैं, जब मैं योग में बैठता हूं, जब कोई बात सुनता हूं, तो वो बातें मेरे दिल में बहुत अंदर अंदर घूमने लगती हैं, मेरी भावना नहीं होती लेकिन वो सारी बातें याद आने लगती, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और इसके कारण मैं इतना परेशान हो जाता हूं कि बैठा हूं भगवान की याद में, योग में, और ये सब बातें मेरे मन में एक दृश्य के रूप में ऐसे घूमने लगती हैं और मैं परेशान हो जाता हूं, मेरा योग नहीं लगता, बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। अगर कोई भी पास्ट की ऐसी स्मृतियां हैं जो इस समय बाबा ने हमें बताई, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अज्ञान काल में इनको हमने गलत समझा ही नहीं। हम समझते तो जीवन है ना, ये विकार तो इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा के बनने के बाद महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी गलतियां, बहुत पाप हुए हैं, अब हमें पावन बनना है, शुद्ध बनना है, तो इन विकारों की आंतरिक अशुद्धियों को समाप्त करना है। अब उसके लिए स्मृति को परिवर्तन करना पड़ेगा, बीती को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। चाहे वो लिख करके बाबा के कमरे में डाल दो, कहता वो भी मैंने कर लिया, सब कर लिया, लेकिन बार बार आता है। कहा तपस्या का एक अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये हमारे शास्त्रों में गाया हुआ है। कुछ भी हो जाए, जब हम ब्राह्मण बने हैं, जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, और जब हमारे आगे एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि हमें ऐसा देव पद प्राप्त करना है, नरश्री नारायण नारी श्री लक्ष्मी समान बनना है, हमें विजयी माला का मणका बनना है, हमें पास विधानर होना है, जब हम उस लक्ष्य को, उस गोल को सामने रखते हैं, उसके बीच में अगर कोई भी अशुद्धियां आती हैं तो उसके लिए बहुत पक्का दृढ़ता का संकल्प चाहिए कि ये ब्राह्मण जीवन के लिए ठीक नहीं है, ये ब्राह्मण जीवन में अशुद्धियां हैं। तो पहले महसूस करना होगा अंदर जा करके, मेरे अंदर अभी तक भी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, किस प्रकार की अस्वच्छता है। चाहे संपूर्ण पक्के ब्राह्मण बनने में, संगम पर पहले हम पक्के ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बने, फिर देवता बने, तीन स्टेजेज हैं हमारे पुरुषार्थ की। पहले चेक करना है मैं पक्का ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण माना स्वच्छ पवित्र शुद्ध, जिनके अंदर जरा भी व्यर्थ और नेगेटिविटी न रहे, खान पान दृष्टि वृत्ति मन की जितनी भी चंचलताएं हैं वो सब बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएं। अगर उसमें शुद्धता आ गई, ब्राह्मण जीवन का एक अच्छा अनुभव होने लगा, अशुद्धियां समाप्त हो गई, तो ब्राह्मण को फरिश्ता बनने में टाइम नहीं लगेगा, बन जाएगा तुरंत। क्योंकि फरिश्ता माना जिसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, बहुत हल्का है, लाइट है। तो तपस्या करके, ऐसी तपस्या, ऐसे दृढ़ता के संकल्प, सिर्फ बैठ करके तपस्या नहीं करनी, लेकिन जब कोई ऐसी अशुद्धियां मन के अंदर आए, क्योंकि पहले तो संकल्प में ही आती हैं, संकल्प को ही डिस्टर्ब करती हैं, जो पास्ट के संस्कार बने हुए हैं, इस जन्म के या पास्ट के जन्मों के हैं तो सबके वो संस्कार, लेकिन वो बीच बीच में जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग में बैठते हैं, तो इमर्ज होते हैं, आ जाते हैं सामने। एक बार बाबा ने कहा था, जो तुम्हारी गहरी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जब बाबा के कमरे में बैठोगे तो वो याद आएंगे। कारण बताया था कि वो कमरा बाबा का जो फोटो है सामने, वो दर्पण बन जाता है, और जैसे दर्पण के सामने जाने से चेहरे के कपड़े के कोई भी दाग स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ऐसे पता नहीं चलता है कोई चेहरे पर या कोई कपड़े में दाग है, लेकिन जब दर्पण साफ और स्वच्छ होता है, उसके सामने खड़े होते हैं, तो छोटे से छोटा दाग भी पता चलने लगता है। ऐसे ही जो भी अशुद्धियां मन के अंदर हैं, संस्कारों में भरी हुई हैं, वो बाबा के कमरे में जब बाबा के सामने बैठते हैं तो थोड़ी देर तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, रूहरियान करते हैं, दृष्टि लेते हैं, बातें करके फिर थोड़ी देर में अगर रिलैक्स होते हैं तो वो सारे जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, पता चल जाता है मेरे अंदर अभी तक क्या है। कईयों को कमियों की महसूसता नहीं है, कईयों को रियलाइज ही नहीं होता कि मेरे अंदर है, समझते हैं मैं तो योगी हूं, मैं तो बाबा का बच्चा बन गया, मेरा खान पान अच्छा है, मेरा संग अच्छा है, मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा कोई से झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूं, अच्छे संग में, अच्छे भोजन में, अच्छे वातावरण में हम आए हैं, रहते हैं, तो कई बार अपनी सूक्ष्म आंतरिक कमजोरियों का पता नहीं चलता। इसके लिए भी बहुत शुद्धता चाहिए। जैसे शुद्ध अच्छे स्वच्छ कपड़े में अगर छोटा सा भी दाग होता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब हम मन को बहुत स्वच्छ बनाते हैं, योग में बैठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार करते हैं, तब वो कोई ना कोई बातें संकल्प में, स्वभाव में, एक घंटे के योग में कितनी बार वो अटैक करने लगते हैं। उस पर नजर जानी चाहिए कि ये छिपे हुए संस्कार अभी तक आत्मा के अंदर हैं। कई बार वो स्वप्न में भी आते हैं, जब स्वप्न में नींद में जाते हैं, वो जो पास्ट के ऐसे कर्म हुए हैं जिन पर बहुत गहरा ध्यान गया है, वो बार बार स्वप्न में भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे जो संस्कार, ऐसी जो अशुद्धियां हैं आत्मा की, उनको समाप्त करने के लिए बहुत गहरी तपस्या चाहिए, बहुत गहरा योग चाहिए, और यो योग लगन में मगन होने वाला चाहिए, जिसको बाबा कई बार कहते ज्वालामुखी योग। बहुत ज्वाला, जैसे कोई आग के अंदर चीज डाल दी जाए, अगर कोई चीज को परिवर्तन करना हो, किसी के रूप रंग को परिवर्तन करना हो, तो आग का सहारा लेना पड़ता। लोहे को भी अगर कोई रूप देना हो, कोई औजार बनाना हो, तो उसको तेज आग के अंदर डाल करके पिघला लेते हैं पहले, फिर ढांचे के अंदर डाल के उसको रूप दे देते हैं। सोने से भी अगर कोई जेवर अच्छे बनाने हो, महीन जेवर, अच्छे जेवर बनाने हो, तो उसको भी बहुत तेज आग के अंदर डालते हैं, फिर पिघल जाता है, फिर उसको ढांचे में डाल देते हैं, जेवर बन जाता। तो बाबा भी हम सब बच्चों को इस तपस्या के अंदर एक एक रस एकाग्र स्थिति के अंदर स्थिर करके हमारी सब कमियों को समाप्त करना चाहता है, कमजोरियों को समाप्त करना चाहता है। क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे जिस स्वरूप में ऊपर से उतरे हैं, बहुत पवित्र स्वरूप में आए हैं। अपने आदि स्वरूप को याद करो, अनादि स्वरूप के बाद, अनादि स्वरूप तो बहुत पवित्र है ही परम धाम का, लेकिन जब सतयुग के अंदर सतो प्रधान प्रकृति के अंदर देवपद प्राप्त हुआ, वो जन्म हुआ, तो बाबा कई बार सुनाते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो माँ को भी साक्षात्कार हुआ और जन्म होते ही चारों तरफ लाइट हो गई। उसका अपना योग बल, पवित्रता का बल, जिस बल से वो आत्मा उत्तरित हुई, आई, जन्म लिया। और इतनी पवित्र आत्माएं केवल एक नहीं है, तो उदाहरण है, जितनी भी सतयुग के अंदर आत्माएं पहले पहले सतयुग में उतरेंगी 9 लाख, वो सब उसी स्टेज से उतरेंगी। इस समय की प्योरिटी, इस समय की तपस्या के आधार से जन्म होंगे, पद बनेंगे, लेकिन अवतरण का, जन्म लेने का तरीका वही योग बल होगा। अब वो पवित्र आत्मा जो बिल्कुल प्योर थी, जो कोई हिसाब किताब नहीं, बंधन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वही आत्मा इस शरीर के साथ आते, संबंध में आते, धीरे धीरे जन्म लेते 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 अभी बंधनों के अंदर, कर्म बंधन की रस्सियों में जकड़ गई, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार बन गए। और कितने कड़े संस्कार हैं, साधारण नहीं है, कई बार पता नहीं चलता, देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े कड़े संस्कार, नेचर बन गई, आदत बन गई, और उन नेचर्स के कारण, आदतों के कारण न चाहते भी चलना फिरना, उठना बैठना ऐसे दिखाई देता है, जैसे कभी कभी कहते हैं हमारा लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, हम देवता बनने वाले हैं, लेकिन जब उनका चलना फिरना देखते हैं, बोल चाल देखते हैं, खान पान देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, तो लगता है अरे लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन क्या कर क्या रहा, एक्टिविटी कैसी है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि पिछले पास्ट के संस्कार बार बार अटैक कर देते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्मृतियों को परिवर्तन करना है। कोई भी पास्ट की ऐसी स्मृतियां अगर आती हैं, उसको ज्ञान और योग की शक्ति से फुल स्टॉप लगाओ, इन स्मृतियों में भाई केवल एक बाबा और उसका प्यार बसा लो। कोई भी पास्ट की स्मृतियां आए बोलो पास्ट इज पास्ट फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना उसके लिए, मुझे तो भविष्य, मुझे ऐसा उच्च पद पाना है, बिना सजाओं के बाबा के साथ जाना है, तो उतना ही शुद्ध और पवित्र बन करके जाना है, जैसे आए थे वैसे जाना है। ऐसा सोचना नहीं, कभी कभी हमारे बाबा के बच्चे एक ढाल, बाबा कई बार कहते हैं बहुत डनलप का तकिया यूज करते हैं, और वो डनलप का तकिया ये होता है कि बाबा तो कहता है 8 ही पास होंगे, 108 को भी थोड़ी बहुत सजा खानी पड़ेगी, तो हम कहाँ हैं 108 और 8 में, जब इतनी बड़ी परीक्षा होगी तो उसमें पास तो 108 ही होंगे, फिर हमारा नंबर तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत तो चलेगा ना ये। तो इसको बाबा क्या कहता है, डनलप का तकिया लगा लिया, रेस करो, लक्ष्य ऊंचा रखो, जितना बने उतना तो बने, तो इसलिए ऊंचे लक्ष्य के बीच में कोई भी ऐसे साधारण और व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। हर एक स्टूडेंट के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस संपूर्णता को प्राप्त करना है, मुझे बाबा के समान बन के दिखाना है, मुझे विजयी रत्नों में आना है, कोई आए या ना आए, लेकिन उसके लिए बहुत संकल्प, बहुत पॉजिटिव और दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ता को ही तपस्या कह रहे हैं बाबा, कहते हैं बच्चे दृढ़ता के संकल्प ले आना कि मुझे बनना है, मुझे नंबर वन में आना है, मैं विजयी माला का मणका हूं, मैं पास भी दानर बनने वाला हूं, ये मियां मिट्ठू बनना नहीं, लेकिन एक लक्ष्य ऊंचा रख करके रेस करना है। उसके लिए जो नेगेटिविटी, जो अशुद्धियां मुझे बाधक हैं, विघन रूप हैं हमारे इस श्रेष्ठ मार्ग के अंदर, उस पर बहुत गहरी नजर रखो, अपने आप से बातें करो। एक बहुत अच्छी बात हमें दादियां सिखाती थी कि अगर कोई बात है तो दूसरा कोई टीचर आपको बदल नहीं सकता। टीचर कितनी भी बातें सुनाए, बाबा भी टीचर बन के पढ़ा रहा है, कितनी अच्छी अच्छी मुरलियां सुना रहा है, हमारी निमित्त बहनें भी कितनी मेहनत करती हैं कि सब सुधर जाए, सब परिवर्तन हो जाए। तो दीदी हमेशा एक बात कहती थी कि ऐसे कोई बदलता नहीं है, अगर सचमुच वो बदलना चाहता है तो स्वयं स्वयं का टीचर बन जाए, स्वयं स्वयं से बातें करे, स्वयं स्वयं को पढ़ाए। कभी भी ऐसी कोई बातें आती हैं बीच बीच में, अपने आप से बात करो, भगवान की नजर मेरे ऊपर क्यों पड़ी, मुझे उसने क्यों निकाला, क्यों अपना बनाया, किस लिए बनाया, क्या इन्हीं सब बातों में युद्ध करने के लिए, मेहनत करने के लिए, मेहनत तो हमने बहुत जन्म किया, उसको इतना समय से ढूंढा, ऐसे ऐसे अपने आप से बात करके, रूह रियान करके, अंदर जा करके, अपने को समझा करके, और उस संकल्प से किनारा कर लो जो आपके काम का नहीं, अशुद्ध है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, उस संकल्प को संकल्प में ही समाप्त कर लो, क्योंकि संकल्प बीज है। अगर संकल्प रूपी बीज की किसी तरह से आपने पालना की, उसको संभाल लिया, तो कहीं भी अंकुर निकल जाएगा बोल और कर्म के रूप में, चाहे वो बोल में दिखाई देने लगेगा, चाहे वो कर्म में आ जाएगा, संबंध संपर्क में आप जाएंगे उस समय इस प्रकट हो जाएगा, दृष्टिवृत्ति से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि संकल्पों में तो बातें भरी हुई हैं, आप किसी कारण से उसको छिपा के दबा के चल रहे हो, बोल नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, लेकिन जब अवसर आएगा, चांस आएगा, जैसे कोई छिपा करके आप अपने घर में कोई बीज रख दो, मटके के अंदर रख दो, भूसे के अंदर रख दो, छिपा के रख दो, कहते बहुत सुरक्षित है, लेकिन कभी भी अगर एक बूंद पानी की उसको सीलन मिल गई या मिट्टी मिल गई, तो पानी और मिट्टी के मिलते ही वो अंकुरित होने लगेगा, कहीं से भी उसमें अंकुर निकल जाएगा। इसलिए वो ना अंकुरित हो उसके लिए कहते हैं इसको भून करके रख दो, थोड़ा पका के रख दो, जला के रख दो, वो जला हुआ बीज फिर अंकुर नहीं देगा, चाहे कितनी भी मिट्टी दो, पानी दो। बाबा भी अपने बच्चों को कहता है, बच्चे योग अग्नि में इस संस्कारों को जलाओ, तपस्या की अग्नि में इन संस्कारों को जलाओ, ताकि कैसा भी वातावरण आए, कैसी भी परिस्थिति बने, तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर, विकारी वातावरण के अंदर, आपके अंदर उत्तेजना ना आए, आपके मन में वो चंचलता ना आए, अब बहुत शीतल योगी पावन बन के रहो। उस अशुद्धि को समाप्त करने के लिए, इंप्यूरिटी की मूल अशुद्धि और कोई अशुद्धि खास नहीं, उस अशुद्धि को समाप्त करने के लिए गहरी रियलाइजेशन महसूसता चाहिए, और महसूसता के बाद उसके लिए बहुत एकांत की तपस्या चाहिए। स्पष्ट अपने आप को देखो, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं और मेरा बाबा जो है जैसा है, दोनों को स्पष्ट देखो। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवनी में पढ़ा होगा, देखा होगा कि ब्रह्मा बाबा को जिस दिन लगन लग गई, 1.5 साल पहले मुझे अभी संपन्न बनना है, तो ब्रह्मा बाबा ने एक बहन को बुलाया, संदेशी, उससे अनुभव पूछा कि जाओ तुम बाबा के पास और देख करके आओ इस बाबा में उस बाबा में क्या अंतर है। देख करके आई तो थोड़ा सा अंतर देखा, कहती बाबा वो तो बहुत चमकदार है, बहुत लाइट है उसके अंदर, बहुत व्हाइट लाइट है, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक है। अभी तक अंतर दिखाया, बता दिया। फिर बाबा ने किया तपस्या। क्या तपस्या किया? जितने विस्तार से समाचार सुनना, खेलना, बच्चों से बहलना, जो भी स्थूल बातें थी, गोद में लेना, मिलना जुलना, पत्र पढ़ना, बहुत सारी बाबा की नेचुरल दिनचर्या जो थी, बाबा ने उसको स्टॉप कर दिया कि इस डार्कनेस को, इस ब्लैकनेस को मुझे निकालना है, शुद्ध बनना है, बिल्कुल वैसा बनना जैसा वो है। तपस्या शुरू कर दी। उस समय की मुरली आप देखो, बाबा ने कहा बच्चे गीत ईत क्यों बजाते हो, बंद करो, गीत बंद हो गया, मुरली के अंदर गीत नहीं है। बाबा से कोई सवेरे उठ करके गुड मॉर्निंग करने आता था, पहले सब जाते थे बच्चे, बाबा ने कहा रे बच्चे क्यों आवाज में आते हो, क्यों गुड मॉर्निंग करते हो स्थूल में आकर के। माना बाह्य मुक्ता से बाबा अंतर्मुखी बन गया, अंदर चला गया, अपने आप से बातें करने लगा, अपनी तपस्या में लीन रहने लगा, सब बातों से उपराम हो गया, न्यारा हो गया, काम सब किया, ऐसे नहीं कुछ छोड़ दिया, लास्ट दिन भी पत्रों के सब उत्तर दिए, जितने बच्चे हैं सबको रिफ्रेश किया, रोज मुरली चलाई, रोज मनन चिंतन किया, वो सब छोड़ा नहीं कुछ, लेकिन अंदर की लगन लग गई कि मुझे तो वो बनना है, बस जैसा ऊपर है ऐसा मुझे बनना है। 1.5 साल की तपस्या के बाद फिर बुलाया संदेश से, अब जाओ देख के आओ। फिर गई तो बेचारी रोने लगी, कहती अरे ये तो अंतर ही नहीं रहा, हो सकता कुछ हो न जाए। तो बाबा ने किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं। जब ये और वो दोनों समान बन गए, बाबा समझ गया कि अभी मुझे इस वस्त्र को उतारना है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे। बाबा को पता था, इसलिए बाबा ने पहले दादी को रोक लिया, बॉम्बे जाना था रोक लिया, रोक करके फिर बोला कि बच्ची तुम यहीं 2-3 दिन रहो, रह सकती हो पार्टी को भेज दो। सब तैयारियां बाबा ने कर ली, फुल उपराम हो गया, फुल न्यारा हो गया, सब कार्य करते हुए किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं संपन्न बन चुका हूं। लास्ट मुरली में भी कहता बच्चे देहमान तो बहुत रहता है ना, कहां खत्म हुआ अभी तक, तो बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं लास्ट में, प्यार बहुत है। लेकिन करते करते 1 मिनट में ऐसे हाथ में हाथ दिया और उड़ गया पंछी। वो गहरी तपस्या, इतनी शुद्ध बना लिया आत्मा को, सुन समझ गया क्या करना शुद्धि के लिए। वो कौन सी तपस्या थी? केवल बैठा नहीं, केवल योग ही नहीं किया, लेकिन विस्तार को सार में ले आया, बाह्य मुक्ता को अंतर्मुक्ता में ले आया। जो इंटरेस्ट थे खेलने के, बच्चों से बहलने के, हंसने के, उन सब इंटरेस्ट को एकदम तपस्या में, जैसे बस ठीक है, सब अच्छे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, बैलेंस नहीं खत्म किया, सेवाएं नहीं छोड़ी, बच्चों को सब प्रकार की पालना दी, लेकिन जो बाह्य मुक्ता थी उसको समेट करके अंतर्मुखी बन गया, एक बाबा के प्यार में खो गया, पावन बन गया, स्वच्छ हो गया, अशुद्धि समाप्त हो गई। तो ऐसी तपस्या की अब जरूरत है, हर घड़ी बाबा कहता है अंतिम घड़ी है। हम सब अपनी अंतिम घड़ी को सामने रख करके हमको ऐसा पावन बनना, लगन लगा दो। इसलिए बाबा ये चांस दे रहा है कि बच्चे कुछ भी हैं, कोई भी ऐसे संस्कार हैं, कोई भी आंतरिक अशुद्धियां हैं, काम विकार के रूप में है, क्रोध की है, मोह की है, लोभ की है, ईर्ष्या की है, नफरत की है, बदला लेने की बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म भावनाएं हैं, व्यक्तियों से बहुत सारे हिसाब किताब बने हुए हैं हमारे, वो सब हिसाब किताब पूरे हो जाए बिल्कुल अपने को। जैसे कहते हैं ना, जब कोई हलवा बन के तैयार होता है ना, तो कढ़ाई को किनारे को छोड़ देता, ऊपर आ जाता। ऐसे ही जब मैं आत्मा उस स्थिति को प्राप्त करूं, संपूर्ण पावन बनूं, तो सब प्रकार की जो भी लगाव की बातें हैं, जहां जहां भी लगाव है, झुकाव है, किसी का प्रभाव है, उसे डिटैच हो जाएंगे, न्यारा हो जाएंगे। प्यारे सबके हैं लेकिन देह अभिमान से बिल्कुल न्यारे हैं। दृष्टि पवित्र है, आत्मा एकदम शुद्ध है, निर्दोष है, कोई दोष दिखाई नहीं देता, किसी की कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हमारी दादियां आजकल यही पक्का किए हुए, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। उनको गलती दिखाई नहीं देती, कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि संपन्नता को पा चुके हैं, उस स्वरूप में हैं। सिर्फ इनको बाबा ने बच्चों की पालना के लिए, हम सबकी सेवा के लिए बिठा के रखा है। गुजार दादी को देखो, बाबा और दादी में अंतर ही नहीं रहा। चेहरा देखो ऐसे लगता है, शरीर बिल्कुल कैसा भी है, कमजोर है, लेकिन चेहरे पर लगता है बाबा सदा इनके यहाँ बैठ गया करके, हटता ही नहीं है। तो मैं परसों मिल रहा था, जब मैं रसिया गया था, वहां से वापस आया तो दादी से मिला दिल्ली में, इतना मुस्कुरा रही है, इतना प्यार, इतना स्नेह, नैनों से टपक रहा है, बाबा ही बैठा हुआ है, और शरीर एकदम कैसा है, कैसा भी है, लेकिन चेहरे में वो संपन्नता दिखाई देती, वो दिखाई देता है बाबा है, समान बना लिया। अब उनको बार बार वतन में जा करके बाबा को बुलाने की क्या जरूरत रही है, इसलिए जाना भी बंद कर दिया है, अभी बैठ जाती है, बाबा आ जाते हैं, समान बन गए। हम बच्चों को भी बाबा अभी कहता, जब ये बन सकते हो तो तुम भी रेस करो, रेस तो करो। इन सब बातों से इन लोगों ने अपने आप को उपराम कर लिया, सेवाएं सब की हैं, यज्ञ को संभाला है, गाइड किया है, सबकी मदद की है, रक्षा की है, सबको सहयोग दिया है, लेकिन किसी में भी अटैचमेंट नहीं है, कोई में भी ये मेरे हैं ये नहीं है, हदें नहीं रखी हैं, उपराम हो गए, संपन्न बन गए, संपूर्ण हैं। तो तपस्या क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं क्या तपस्या कर रहे हैं, कोई खास बैठ के योग कर रहे हैं क्या? लेकिन उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, उनकी भावनाएं, उनकी स्मृतियां क्या है, उनमें बाबा 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 बाबा, ये तपस्या है, और वो तपस्या के आधार से संपन्नता के समीप है, अशुद्धियां समाप्त हो गई हैं। कोई को भी लगता है कि इनसे कैसे मिलें, इनसे कैसे बात करें, कुछ तो दो शब्द तो बोल दें, कितने प्यारे लगते हैं, निर्दोष लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, तपस्या से बन गए ना ऐसे। और हम सभी भी रेस करें कि कोई भी प्रकार की सूक्ष्म में भी ऐसी अशुद्धि है, कोई भी संस्कार है, दिल से कष्ट नहीं हो जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा, हम लोगों के तो बहुत कड़े संस्कार, कई लोग ऐसे निराश हो जाते हैं, तो बाबा कई बार कहता है ये भी इनको दिल की बीमारी हो गई, उमंग उत्साह कमजोर हो गया। जैसे दिल की बीमारी में ब्लॉकेज हो जाती है ना, ऐसे उमंग उत्साह कमजोर हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो, हमको बनना है, हम ही बने थे, हम वैसा बन के दिखाएंगे, जैसे आए थे वैसे बन के जाएंगे, और बिना सजाओं के जाएंगे, बाबा के साथ साथ जाएंगे, ठीक है, बनेंगे ना ऐसा। भट्टी इसलिए कर रहे हो ना, ये साधारण भट्टी नहीं है, ऐसा समझो बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, मैं खुद को देखूं और बाबा को देखूं, और जो अंतर है उसको मिटा दूं, बस जो अंतर है, जो भी किसी का कोई ऐसा संस्कार है जो पास्ट का है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, उसको रियलाइज करो, और तपस्या के द्वारा, दृढ़ता के संकल्प से इस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर, आत्मा पावन बन जाएगी, कंचन बन जाएगी, और बाबा के साथ उड़ने लगेगी। शरीर छूटे न छूटे लेकिन योग में मेहनत नहीं लगेगी, बहुत सरल बैठेंगे, ऐसे लगेगा मैं तो बाबा के साथ ही हूं, इस देह से डिटैच होने में मेहनत नहीं लगेगी, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होने लगेगा, शुद्धता आ जाएगी तो ये भटकना अपने आप मन का बंद हो जाएगा, आकर्षण समाप्त हो जाएंगे, हद की चीजें खींचेंगी नहीं। बहुत सारी निशानियां हैं तपस्वी की, तो इसलिए एक एक कर्म इंद्रिय को तपाना है हर प्रकार से इसके अंदर। कहते हैं योगी तपस्वी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हैं, अंग अंग शीतल और सुगंधित हो जाए, इसके लिए तपस्या कर रहे हैं ना, किस लिए करेंगे? तो हम सब ऐसी तपस्या दिल से करो, ऐसे नहीं कोई बोझ है, कोई जबरदस्ती है, कोई मजबूरी है, बहुत दिल से बस, मैं बाबा का बाबा मेरा, और कोई गीत थोड़ी अंदर गाना है, मैं बाबा का बाबा मेरा, बस बाबा के प्यार में खो जाओ, उस बिंदु ज्योति को देखते देखते उसमें समा जाओ। कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, भवत बच्चे लीन हो जाओगे तो समाप्त हो जाओगे, अविनाशी सत्ता कभी लीन थोड़ी होती, लौ लीन हो गई, बाबा के प्यार में खो गई। तो हम सब बाबा के प्यार में समा जाए, बस योग यही है, तपस्या यही है, और इसी तपस्या से जितनी खाद है, जितने प्रकार की मैल अंदर आई है, वो सब अपने आप पिघल करके निकल जाएगी, कोई मेहनत नहीं लगेगी। आ गई है संग दोष के कारण, खान पान के कारण, इस शरीर के साथ रहते रहते, शरीर के साथ 84 जन्म रहे हैं ना, तो शरीर का भान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अब एक जन्म थोड़े समय में इसको भुलाना थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन बाबा के साथ से, उसकी मदद से, संकल्पों की एकदम निश्चय और दृढ़ता के आधार से, बाबा कहता है जहां निश्चय और नशा है वो तपस्या है, जहां नम्रता है वहां त्याग है। त्याग माना क्या? नम्रता आ जाए ना, मैंपन समाप्त हो जाए। सबसे बड़ा त्याग क्या है? मैं, इसका त्याग सबसे बड़ा त्याग, और जिसने मैं का त्याग किया वो नम्रचित बन गया, निर्माण बन गया, वो त्यागी है। बाकी ये चीज छोड़ दिया, ये चीज नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, ये साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, इसको त्याग दिया, इसको ये दिखावा है। त्याग तो ये है कि आत्मा एकदम नम्र चित बन जाए, निर्माण चित बन जाए, निरहंकारी बन जाए। ये भी नहीं कहे मैंने त्याग किया है, मैं बड़ा योगी हूं। इसलिए तो बाबा ने 3 मंत्र पढ़ाए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अब निर्विकारी के अंदर निरहंकारी नहीं है क्या? निर्विकारी माना संपूर्ण विकारों पर जीत, संपूर्ण पावन। लेकिन संपूर्ण पावन बनने के बाद भी मैं पावन हूं, ये मैंपन आ गया अगर, तो भी निरहंकारी तो नहीं है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को कितनी महीनता से बात पढ़ाता है कि निर्विकारी बनने के बाद भी ये ना आए मैं योगी हूं, मैं निर्विकारी हूं, ये तो ऐसे ही है, वो भी निरहंकारी। तो इतनी नम्रता आ गई, माना विकारों का त्याग हो गया, देह अभिमान का त्याग हो गया। तो इसलिए त्याग का भी त्याग, मैंने त्याग किया इस वर्णन का भी त्याग कर दो, तपस्वी बन जाएंगे, और तपस्वी बन गए तो एक बाबा दूसरा ना कोई निश्चय टूट है, नशा है कि हम किसके हैं, किसके साथ हैं। और ऐसे त्यागी और तपस्वी हैं तो आत्मा उसकी एकदम चमकने लगेगी, हीरा बन जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, अशुद्धियां उसके हाथ समाप्त हो जाएगी। तो अशुद्धियों को समाप्त करने का साधन, एकमात्र साधन तपस्या, एक की लगन, एक की याद, एक बल, एक भरोसा, एक वृत्ता स्थिति, एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक है, तो चलो अभी हम सब उठेंगे तो नहीं ना, 1 घंटा बैठेंगे सभी, ऐसी तपस्या हम करें। मैंने कहा मैं बैठूंगा 1 घंटा और इनके साथ, 3 लक्ष्य मैं दूंगा आपको, 3 स्टेप में योग करेंगे 20-20 मिनट का। पहले 20 मिनट में आप बहुत प्यार से बाबा से और अपने आप से मीठी मीठी रूह रियान करना, बहुत दिल से बातें करो, बाबा आपने कैसा महान बनाया, कितना ऊंच बनाया, कैसी जीवन दी, कितनी पवित्र स्वच्छ निर्मल निश्चिंत जीवन बनाई। पहले 20 मिनट में इतना शुक्रिया मानो, इतना प्यार में खो जाओ जो नैन गीले हो जाए, एकदम ऐसे लगे तो प्यार की मूर्तियां प्रेम में डूब गई हैं। फिर मैं 20 मिनट के बाद 1 लक्ष्य छोड़ दूंगा, पूरा टाइम कमेंट्री नहीं, लेकिन 20-20 मिनट के बाद मैं 3 लक्ष्य दूंगा, गीत बजेगा 1-2 मिनट का, उसके बाद मैं बोलूंगा और आप सब उसी स्टेज के अनुसार मेडिटेशन करना। तो 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है तो 5-3 मिनट के लिए उठ के जाओ, नहीं तो सब बैठे रहो, और जो नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। तपस्वी का आसन तो यही है, तो आप सब तपस्वी आसन में बैठो, जो बैठ सकते हो, हट नहीं है, जो आराम से बैठ सकते हो बैठ जाओ, और अपने आप को इस भ्रकुटी आसन पर पहले स्थित करो। अपने दिव्य सितारे को देखो, मैं इस देह से भिन्न एक जगमगाता हुआ चैतन्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। बहुत शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं एक शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर राजा बन के विराजमान हूं। कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो भगवान ने मुझे अपना बना लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी पालना में मुझे पाल रहा है। बस रूह रिहान करो बाबा से, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करो, दिल से बातें करो, और उसी प्यार के सागर में समाने का अनुभव करो। अभी कुछ समय के लिए हम सब अव्यक्त वतन का अनुभव करेंगे। हर एक को बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, और ये दिव्य बुद्धि एक सुंदर विमान का काम करती है। हर एक अपने दिव्य बुद्धि के विमान से इस साकार वतन से पार, अपने लाइट के वतन में, जहां चांदनी से सफेद सफेद लाइट फैली हुई है, उस सूक्ष्म वतन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त शरीर के द्वारा हम सब बच्चों का आवाहन करते हैं। अनुभव करो, बाबा अपनी बड़ी भुजाओं में समाने के लिए मुझ आत्मा को अपने पास बुला रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मेरे वतन में आकर विश्राम करो। हम सब अपने अपने लाइट के शरीर में एक बहुत सुंदर दिव्य शरीर के चारों ओर लाइट की अनुभूति करते हुए, लाइट के शरीर द्वारा लाइट के वतन में चलेंगे, और बाबा की दिव्य लाइट बाबा के मस्तक से और नयनों से निकलते हुए चारों ओर मेरे ऊपर आ रही है, और मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर से बाबा के साथ कंबाइंड हो गई हूं। बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं अव्यक्त वतन की। कुछ समय उसमें समाने का अनुभव करो, और फिर बाबा के साथ पूरे ग्लोब को लाइट दो, तो अव्यक्त वतन की सैर करने के लिए हर एक अपने लाइट के शरीर में विराजमान होकर बुद्धि के विमान से अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की नजरों के नीचे समाने का अनुभव करो। अभी हम सब अपने स्वीट साइलेंस होम में, अपने मूल वतन में ज्ञान सूर्य बाबा के सानिध्य में, उनकी समीपता का, सर्वशक्तियों का अनुभव करेंगे। अपने लाइट और माइट स्वरूप में, अपने चमकते हुए दिव्य सितारे को, उस स्वीट साइलेंस होम में बाबा के समीप स्थिर कर दो और उस मूल वतन की, अखंड ज्योति महतत्व की गहन शांति का अनुभव करो। एक ओर बाबा की शक्तियां, दूसरी ओर वतन की प्योर साइलेंस की शक्ति, दोनों शक्तियों में समाने का अनुभव करो। सब संकल्प समा जाएं बाबा के इस ज्ञान सूर्य रूप को देखो और अनुभव के सागर के तले में चले जाओ।